दिन भर तारीख 14 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। गुजरात में दूसरे चरण में 68.70% लोगों ने डाले वोट।
इस बार गुजरात में परिवर्तन लाने से जनता सोच रही है।
इस बार परिवर्तन आना चाहिए, कुछ काम ही नहीं हुआ गुजरात में।
वोट देकर निकले प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा आचार संहिता का उल्लंघन।
जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री संविधान और चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, कठपुतली बना चुनाव आयोग आंख मूंदे है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं।
नजरें 18 तारीख को गुजरात व हिमाचल प्रदेश के परिणामों पर होंगी। कार्यक्रम में होगी आपकी राय भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। गुजरात विधानसभा में दूसरे और आखिरी चरण के 93 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान पूरा हुआ। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के मुताबिक दूसरे चरण में शाम 4 बजे तक करीब 68% वोटिंग हुई है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 18 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इसी दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान के दौरान रूसी अधिकारियों से उनके संबंधों की बात केवल इसीलिए उछाली गई थी ताकि ट्रंप अपने समर्थकों की मांगें पूरी ना कर सकें। उन्होंने कहा,
все это придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу।
ये सारा मुद्दा विपक्ष के लोगों का ही बनाया हुआ है ताकि वो इस बात को साबित कर सकें कि ट्रंप गैरकानूनी काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग मतदाताओं की इच्छा का सम्मान नहीं कर रहे हैं जिन्होंने ट्रंप को अपना नेता चुना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन की चीन यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के पत्रकारों और चीनी सुरक्षाकर्मियों के बीच मारपीट हो गई है। राष्ट्रपति मून जेई इन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को बढ़ाने के उद्देश्य से बीजिंग में आयोजित व्यापार मेले में शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले थे। ये घटना तब हुई जब पत्रकारों ने व्यापार मेले से बाहर निकल रहे राष्ट्रपति मून जेई इन के नज़दीक जाने की कोशिश की और चीनी सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लू कांग ने कहा, अगर कोई इस हादसे में घायल हुआ है तो ये चिंता की बात है। जहां तक इस हादसे के बारे में मेरी जानकारी है, ये हादसा दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित एक व्यापार मेले में हुई है। हालांकि इस व्यापार मेले का आयोजन दक्षिण कोरिया ने ही किया था, लेकिन ये हादसा चीन की सरहदों के भीतर हुई है और हम इससे काफी चिंतित हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग के शब्द। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि देश के दक्षिणी हेलमंड प्रांत में तालिबान लड़ाकों के एक हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। इलाके के गवर्नर हयातुल्ला ने बीबीसी को बताया कि वो मृत लोगों की पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार, जब सुरक्षा बलों का एक दस्ता मैवंद में एक संदिग्ध तस्कर को गिरफ्तार करने पहुंचा तो उन पर हमला कर दिया गया। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। इराक में चरमपंथ से जुड़े अपराध के लिए सजा प्राप्त 38 लोगों को फांसी दे दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि देश के दक्षिण में मौजूद निसीरिया की एक जेल में इन लोगों को फांसी दे दी गई। उनका कहना है कि जिन लोगों को सजा दी गई है वो सभी कथित इस्लामिक चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के सदस्य हैं। इसी साल की सितंबर में 42 सुन्नी इस्लामी चरमपंथियों को इसी जेल में सजा दी गई थी। ब्रिटेन में एक अदालत ने 4 इराकी नागरिकों को इराक युद्ध के दौरान ब्रितानी सैनिकों के दुर्व्यवहार के लिए मुआवजा दिया है। लंदन में एक न्यायाधीश ने कहा कि गैरकानूनी तरीके से जेल में बंद किए जाने और उनके साथ गलत व्यवहार के लिए वो इस मुआवजे के हकदार हैं। वकीलों का कहना है कि इन 4 मामलों में आने वाला फैसला इसी तरह के लगभग 600 से अधिक अनसुलझे दावों के निपटान के लिए आधार बन सकता है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति की प्रमुख फेडेरिका मोगेरिनी का कहना है कि संघ लीबिया में लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी शिविरों में से 15,000 शरणार्थियों को अगले साल की फरवरी के अंत तक उनके देश भेजने की तैयारी कर रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन पा रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। गुजरात, गुजरात में नई सरकार किसकी होगी? विधानसभा में अब किस दल का वर्चस्व होगा? राज्य में किस दल की तूती बोलेगी? किसकी रणनीति कामयाब रही, किसे निराशा हाथ लगेगी? इन सारे सवालों के जवाब मतदाताओं ने दे दिए हैं। मतदाताओं के जवाब वोट की शक्ल में ईवीएम या मशीनों में दर्ज हो चुके हैं और इस तरह से गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होने के साथ ही राज्य में निर्वाचन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। चुनाव में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत सभी दलों के नेताओं ने प्रचार में पूरा जोर लगाया। आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव को दिलचस्प बनाया और चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 68.70% यानी लगभग 69% मतदान दर्ज हुआ। उमेश सिन्हा, उप चुनाव आयुक्त ने कहा,
The average turnout for phase 2 is 68.70%. So 68.70. Yeah, this is the total figure which has been received so far.
उमेश सिन्हा उपचुनाव आयुक्त बता रहे थे कि लगभग 68.70% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब 18 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो पता चलेगा कि गुजरात व हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। गुजरात की जिन सीटों पर आज मतदान हुआ उसमें अहमदाबाद वडोदरा और बनासकांठा मुख्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गांधीनगर में वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद वोट डालने पहुंचे। कुल मिलाकर कैसा रहा दूसरे चरण का मतदान, हमारे सहयोगी रजनीश कुमार अहमदाबाद में मौजूद हैं, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
182 सीटों वाली विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 9 दिसंबर को सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में 89 सीटों पर मतदान हुआ था। आज दूसरे चरण के तहत 93 सीटों पर मतदान हुआ। एक तरफ यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है जहां बीजेपी पिछले 22 सालों से सत्ता पर काबिज है, तो दूसरी तरफ चुनावी राजनीति में सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस खुद को बचाने की जद्दोजहद में लगी है। एक दशक से ज्यादा गुजरात के मुख्यमंत्री रहे मोदी के लिए प्रधानमंत्री के रूप में यह पहला गुजरात विधानसभा चुनाव था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रमुख के तौर पर राहुल गांधी के लिए भी यह पहला चुनाव था। अगर कांग्रेस की जीत होती है तो राहुल की शुरुआत ही धमाकेदार होगी और मोदी की जीत होती है तो और ताकतवर होंगे। दोनों पार्टियों के चुनावी अभियान और इसकी अहमियत पर सूरत स्थित स्टडी फॉर सोशल साइंस के प्रोफेसर किरण देसाई कहते हैं,
इस चुनाव में दोनों मुख्य प्रवाह की पार्टियों का स्पष्ट रूप से पर्दाफाश हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पिछले दौर में जाहिर सभा में एक बड़े मुस्लिम राजकीय नेता के साथ पाकिस्तान का नाम जोड़ के एक षड्यंत्र का जिक्र किया और कौमी ध्रुवीकरण करने का प्रयास तो किया ही, बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की, वो बड़ा शोचनीय था। और दूसरी ओर कांग्रेस को देखिए, जिस तरह से चुनाव का उन्होंने प्रचार किया उसको देखिए, एक तो है सॉफ्ट हिंदुत्व और दूसरा है ज्ञातिवाद। तो ये तो बीजेपी का जो एजेंडा है उसका एक दूसरा रूप ही हो गया है। बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी से सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने बीजेपी की ही बी टीम के रूप से ये चुनाव को लड़ा है।
आज उत्तरी और मध्य गुजरात में 93 सीटों पर मतदान हुआ। 2012 के चुनाव में इन 93 सीटों में से 52 पर बीजेपी और 39 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। कई विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 22 सालों में पहली बार कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती दिखी। दोनों पार्टियों की तरफ से चुनावी अभियान में तीखे हमले बोले गए। 18 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आएंगे। जाहिर है चुनावी नतीजों का असर देश की वर्तमान राजनीति पर सीधा पड़ेगा। दोनों पार्टियों के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी अहम होंगे।
जहां जहां वोट पड़े वहां वहां पोलिंग बूथ पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं और वोटरों की दिन भर गहमा गहमी रही। ऐसे ही एक बूथ पर मतदाताओं से बात करने के लिए जा पहुंचे हमारे सहयोगी रजनीश कुमार।
मैं अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर हूँ। इस स्कूल का नाम है शाहपुर म्यूनिसिपल गुजराती स्कूल। यहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं। कतारें दो हैं, महिलाओं की एक अलग कतार है, पुरुषों की एक अलग कतार है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, सुरक्षा बल भी मौजूद हैं। मतदान के लिए लोगों में जोश तो साफ दिख रहा है। यहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं। जो भी पोलिंग एजेंट जिस पार्टी के हैं उनको अपना पर्चा थमा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस पे वोट देना है। ईवीएम के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे कौन निशान कहाँ पे है और कहाँ पे किसको आपको वोट देना है। हम यहाँ पर कुछ मतदाता जो लाइन में लगे हैं उनसे हम बात करते हैं।
मेरा नाम गौरांग सोलंकी है।
सोलंकी जी बताएंगे क्या सोचकर मन में आए हैं।
पिछले 5 साल से ये दरियापुर 51 विधानसभा में कोई चेंजिंग नहीं आया है। इस साल हम सोच रहे हैं कि कुछ चेंजिंग आए, उसके लिए कुछ अलग वोटिंग, अलग तरह से कैसे वोटिंग करें और कोई अच्छा उम्मीदवार आए, ऐसा हम सबका इच्छुक है।
आपका क्या नाम है?
आराधना।
क्या सोच कर आई हैं आप?
मैं ये सोच कर आई हूँ कि जो भी आएगा वो अच्छा करेगा, बस
अच्छा करेगा।
हाँ, गुजरात का भला करना
आपके
चाहिए।
घर से सारे लोग वोट देने आए हैं।
हाँ।
आपका क्या नाम भैया?
मेहुल। चुनाव में तो कुछ नहीं है, पर जो भी हो ना वो अच्छा होना चाहिए।
क्या तुम तो यूथ हो भाई?
हाँ।
क्या नाम है?
कार्तिक।
कार्तिक,
बस सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। जो भी जीते हमको उसे कुछ नहीं, को जब भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, खाली स्वच्छता होनी चाहिए और हमारा काम होना चाहिए बस। म्यूनसिपालिटी स्कूल अच्छी होनी चाहिए।
आप नाम बताएंगे, आपका नाम क्या है?
लीला बेल।
आप क्या सोच कर आई हैं इस बार? क्या मतलब वोट देने जब निकली तो कुछ
क्या हो, कोई को भी दे, उनको दे, कि उनको देना ही है ना।
हमारा नाम रमेश भाई है।
रमेश भाई बताइए इस बार क्या सोच कर आए हैं, क्या मुद्दा है चुनाव का, मुख्य मुद्दा क्या है?
हमको कुछ पता नहीं है।
शुक्रवार वोट डाले हम।
आप बताएंगे भैया?
इस बार गुजरात में परिवर्तन लाने से जनता सोच रही है।
इस बार परिवर्तन आना चाहिए, कुछ काम ही नहीं हुआ गुजरात में।
योजना में क्या सोचता है अपना गरीब की, पूरा गुजरात का अच्छा हो गए और गरीब लोग को कोई मकान को सहायना मिले, ऐसा सोचते है। सब हमारी रक्षा करे ऐसा सोचते है।
आप बताएंगे?
क्या बताओ
इस बार क्या समस्या है, क्या सोच कर आएंगे घर से आप?
मोदी आएगा, यही सोच के आए।
जो युवा को पसंद करेगा, जो युवा का काम करे उनको वोट देंगे हम।
परिवर्तन
तो मतदाताओं में कितना जोश है, कोई परिवर्तन की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है कि हम किसके समर्थन, मतलब खुलकर जाहिर कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैंने किसी से पूछा नहीं कि किसको वोट देना है। कई लोग जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें किसे वोट करना है।
रजनीश कुमार आम मतदाताओं से बात कर रहे थे अहमदाबाद के एक पोलिंग बूथ पर। इस बीच गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद के ही एक बूथ पर वोट देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस काफिले के साथ वहां से रवाना हुए उस पर विवाद हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि कल चुनाव आयोग ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी का इंटरव्यू दिखाने पर रोक लगाते हुए कहा था कि इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और साथ ही आयोग ने इसे प्रसारित करने वाले चैनलों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश भी दिए थे। आयोग ने राहुल गांधी को 18 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस बात का जवाब देने के लिए कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ क्यों न उचित कार्रवाई की जाए। आज दूसरा मामला। आज कांग्रेस ने मोदी के काफिले को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया और आरोप लगाया कि निर्वाचन अधिकारी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के दबाव में काम कर रहे हैं। बयान देने के लिए आए पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला।
जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री संविधान और चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, जिस प्रकार से कानून और चुनाव आचार संहिता की हर मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चुनाव आयोग और प्रशासन के साथ मिलकर गुजरात में वो रोड शो कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि एक कठपुतली बना चुनाव आयोग आंख मूंदे है और संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं।
रणदीप सुरजेवाला आरोप के बाद प्रत्यारोप जो थे वो चलते रहे। हमारे सहयोगी अभिमन्यु कुमार ने गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BB स्वेन से बात की और पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर चुनाव आयोग कुछ कार्रवाई करेगा क्या?
हमारे MCC कमेटी वहाँ ऑन द स्पॉट हर जगह में रहते हैं और वहाँ हमारे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कमेटी भी वहाँ उपस्थित था, वो लोग सारे चीज का शूटिंग करते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू कमेंट ऑन वेदर इट्स अ वायोलेशन और नॉट इज टू प्रीमैच्योर, बट वी हैव ऑलरेडी।
BB स्वेन कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या काफिला जो है वो जांच के दायरे में है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि काफिला आचार संहिता का उल्लंघन था।
शिकायत करती है तो क्या आप नरेंद्र मोदी को सो काउच कर सकते हैं?
देखिए, अगेन प्रिजम्पशन के ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ। ईच एंड एवरी कंप्लेंट इज वेरीफाइड, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन टेल।
जब अभिमन्यु ने ये सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शो कॉज का नोटिस दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आयोग हर पक्ष को देखता है, हर शिकायत को सुनता है। ये थे गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BB स्वेन। तो ये मामला है गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद के एक बूथ पर वोट देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जिस काफिले के साथ वहां से रवाना हुए उस पर आज विवाद।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 9510, 9540, 11945 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। राजस्थान में लव जिहाद के नाम पर बंगाल के एक मजदूर की हत्या के बाद गुरुवार को उदयपुर और राजसमंद में अभियुक्त के पक्ष में रैली निकालने वालों को पुलिस ने खदेड़ दिया। भीड़ के बीच दिन भर झड़पें हुई, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। इस बीच राजसमंद कूच कर रहे एक हिंदू संगठन के नेता को जयपुर में ही हिरासत में ले लिया गया। क्या कुछ हुआ सुनिए जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट में।
कोई हफ्ते भर पहले राजसमंद में बंगाल के अफराजुल की हत्या के बाद कुछ गुटों ने उदयपुर में आज जुलूस निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव किया। पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात को नियंत्रण में लिया। प्रशासन ने हालात को देखते हुए उदयपुर और राजसमंद में निषेधाज्ञा लागू कर रखी है, साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी रोक दी गई है। वहां तनाव तब पैदा हुआ जब एक हिंदू संगठन के नेता उपदेश राणा ने अफराजुल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार शंभूलाल रैगर की हिमायत में रैली निकालने का आह्वान किया, लेकिन पुलिस ने उपदेश राणा को जयपुर में ही हिरासत में ले दिया। जयपुर के पुलिस उपायुक्त अशोक गुप्ता ने बीबीसी को बताया कि उपदेश राणा सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उदयपुर के बाजारों में कथित हिंदू गुटों से जुड़े लोगों ने दिन भर हंगामा किया और पुलिस पर पत्थर भी फेंके। उदयपुर के पुलिस अधीक्षक आरपी गोयल ने मीडिया से कहा, हालात नियंत्रण में है।
पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, इसको मद्देनजर रखते हुए अभी उदयपुर शहर में धारा 144 लागू की गई है, जिसकी पुलिस के द्वारा कठोरता से पालना करवाई जा रही है। अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए।
पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, साथ ही ऐसे लोगों के अकाउंट भी ब्लॉक कराने की कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें लिखने वाले 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
तो जैसा कि आपने सुना, राजसमंद कूच कर रहे एक हिंदू संगठन के नेता को जयपुर में हिरासत में ले लिया गया। जानकारी दे रहे थे नारायण बारेठ।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर आप सुन रहे हैं। फेसबुक पर जो हमारे श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय खबर का जिक्र करते हैं। अगस्त में म्यांमार में हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक 6,700 से ज्यादा रोहिंग्या मारे जा चुके हैं। ये दावा है गैर सरकारी संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का, जो कि युद्ध क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जानी जाती है। सुनिए बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार सर्वप्रिया सांगवान से।
डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था ने अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। ये रिपोर्ट म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आए कई रोहिंग्या मुसलमानों से बातचीत पर आधारित है। रोहिंग्या चरमपंथियों के 30 पुलिस नाकों पर हमले के बाद अगस्त में बर्मा की सेना ने प्रतिक्रिया में जंग छेड़ दी थी। बर्मा की सेना का दावा है कि मरने वालों की संख्या 400 है और इनमें से ज्यादातर मुसलमान चरमपंथी हैं, लेकिन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक ये संख्या कहीं ज्यादा है और इसके लिए म्यांमार में की जा रही हिंसा जिम्मेदार है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर की कुलिन क्लियर का कहना है कि इन मौतों पर सवाल तो होने चाहिए।
We talk about people being killed, burnt alive in their houses, being beaten to death. So those numbers,
हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो मारे जा रहे हैं, अपने ही घरों में जिंदा जला दिए गए, पीट पीट कर मार डाले गए, तो कम से कम इन आंकड़ों पर सवाल तो उठने चाहिए। इंसानियत के खिलाफ जुर्म, नस्लीय हिंसा और नरसंहार मैं नहीं कह सकती कि क्या है, लेकिन ये जो मौत के आंकड़े हैं ये हैरान करने वाले हैं और इन पर बात होनी चाहिए।
कर्लिन क्लेयर के शब्द। म्यांमार में बौद्ध बहुसंख्यक हैं। साल 2012 में बौद्धों और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच रखाइन प्रांत में संघर्ष शुरू हुआ। इसमें 1,40,000 से ज्यादा रोहिंग्याओं को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। 2014 में म्यांमार की सरकार ने रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिक मानने से इनकार कर दिया। सरकार उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मानती है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एजेंसी की सदस्य लुइस ऑबिन म्यांमार से बांग्लादेश पलायन कर रहे रोहिंग्या शरणार्थियों का हाल बताती हैं।
सीमा पार से आने वाले शरणार्थियों के चेहरों पर दिखता है कि वहां से आकर उन्होंने राहत की सांस ली है। लोग अपनी आप बीती बताते हैं, उनके साथ हुई ज्यादतियों की, भेदभाव की भयानक कहानियां बताते हैं। कई लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनके परिवार का सदस्य कहां गया। उनमें से कुछ या तो पलायन के वक्त बिछड़ गए या रखाइन में हुई हिंसा में उन्हें खो दिया।
लुइस ऑबिन के शब्द। नवम्बर में एक आंतरिक जाँच करवाकर म्यांमार की सेना ने खुद को सभी आरोपों से बरी कर लिया। सेना आम लोगों को मारने, गांवों को जलाने और बलात्कार के आरोपों को खारिज कर चुकी है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट दावा करती है कि 69% मौतें गोलियों से हुई हैं। 9% लोगों को उनके घर में जलाकर मार दिया गया। 5 साल से कम उम्र के मरने वाले बच्चों में 59% गोलियों से मारे गए हैं। इससे पहले भी कई पत्रकारों और शोधकर्ताओं की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती रही हैं कि म्यांमार की सेना ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है।
म्यांमार में हिंसा शुरू होने के बाद से अब तक 6,700 से ज्यादा रोहिंग्या मारे जा चुके हैं, ये दावा है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का। और अब आपकी राय।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ हैं
सुमिरन प्रीत कौर।
बहुत खामोशी से बोल रही हैं सुमिरन प्रीत कौर। सुमिरन, तो चिट्ठियां आपके पास हैं, डाक वाली चिट्ठियां और कुछ ईमेल भी हैं, तो डाक वाली चिट्ठियों से शुरू कीजिए।
जी बिल्कुल। और ये पत्र हमको लिखा है,
ये जो पहली चिट्ठी आपने ली है ये लिखी है हमें अगम प्रकाश ने, और बहुत मुश्किल हो रही है पढ़ने में। RSAHS स्कूल मध्य प्रदेश राजा बोरान हरदा, कुछ इस तरह का लिखा है। देखिए, जब आप स्पष्ट नहीं लिखेंगे तो हम आपके पते को साफ साफ पढ़ नहीं पाएंगे। ये सुमिरन प्रीत कौर इस आपकी लिखावट को पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए पोस्ट कार्ड मेरी तरफ बढ़ा दिया। बहरहाल लिख क्या रहे हैं ये आप पढ़ दीजिए।
ठीक है, चलिए मैं ये पढ़ देती हूँ। और ये कहते हैं कि मैं पिछले लगभग 40 वर्षों से BBC लंदन का कार्यक्रम सुन रहा हूँ और कई बार पत्र लिख चुका हूँ, और गुरुवार को अपना नाम सुनकर मैं खुश हुआ, और आपकी तारीफ मैं क्या करूँ। बस एक आपसे दरखास्त है कि आप 6:30 बजे का कार्यक्रम तथा 7:30 बजे वाला कार्यक्रम जो है उस पर कुछ काम करें, क्योंकि वो स्पष्ट तरीके से सुनाई
नहीं पड़ता है। ये भी शिकायत बहुत सारे श्रोताओं की है। अगर आप हमें बताएंगे कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पे किस जगह पर आपको ये कार्यक्रम साफ नहीं सुनाई पड़ते हैं, तब हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी हैं जहां ये बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज में साफ नहीं सुनाई पड़ता है।
और अगला पत्र हमें लिखा है अनिल डोबरियाल ने, जिला गढ़वाल से, उत्तराखंड से। और ये कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं रेडियो लेके साथ में चलता हूँ, क्योंकि मैं रेडियो सुनना चाहता हूँ, BBC का जो कार्यक्रम है वो सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इससे ज्ञान मिलता है। और वो कहते हैं कि काफ़ी किलोमीटर दूर मेरा घर है और मैं फिर भी हमेशा रेडियो साथ लेके
चलते हैं। डोबरियाल साहब की चिट्ठी मैंने पहले भी पढ़ी है, ऐसा मुझे अंदाजा है। शिकायत भी इन्होंने लिखी है कि मुझे BBC की रात्रिकालीन सभा 7:30 से 8 बजे वाली जो सभा होती है वो साफ नहीं सुनाई पड़ती। तो आप भी अगर बताइएगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पर आपको साफ नहीं सुनाई पड़ती, तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे।
जी, और तारीफ अब शिकायत
मतलब आप इंतजार ही कर रही थी।
जी तो ये पत्र हमें लिखा है अशोक कुमार ठाकुर ने, और दरभंगा बिहार से। और ये कहते हैं कि जो दुनिया जहान में नेपाल के चुनाव पर जो विश्लेषण किया गया वो उन्हें बहुत पसंद आया। नेपाल में राजशाही के समाप्ति के बाद से लेकर वर्तमान समय तक जो नेपाल की राजनीति है उसमें बहुत बदलाव आ चुका है, और ये कार्यक्रम उन्हें बहुत पसंद आया दुनिया जहां।
तो ये तारीफ तो आदर्श कुमार राठौड़ की है, जिन्होंने दुनिया जहान कार्यक्रम तैयार किया था इस बार, और आपके ये काम का कार्यक्रम था, इसलिए हमें भी बहुत खुशी है।
जी, और एक और तारीफ ये बिहार से लिखा है पत्र हमें शिवदर्श सिंह ने, जो कहते हैं कि श्री
शिवदर्श सिंह
जी
बिहार में, क्या इनका पता है?
बिहार में शाखा डिहरी रोहतास।
ये इन्होंने भी मोहर लगा दी है, अध्यक्ष अर्जक संघ प्रखंड शाखा डिहरी रोहतास बिहार।
जी
भाई, पता साफ साफ लिखा करें, नाम साफ साफ लिखा करें, तभी हम पढ़ पाएंगे।
वो कहते हैं कि BBC द्वारा प्रसारण जो है वो जोश भरा रहता है राजेश जोशी का, और उन्हें पत्र लिखने में बहुत उत्साहित होकर पत्र लिख रहे हैं।
क्या बात, और ऐसे ही श्रोताओं की हमें आवश्यकता है जो हमारे उत्साह को और बढ़ाते रहें अपनी चिट्ठियों के द्वारा।
जी,
और इनकी चिट्ठियां मिलती हैं तो हमारा उत्साह और चौगुना हो जाता है।
जी, और कहते हैं कि मैं BBC को विश्व का सबसे बड़ा जन अदालत मानता हूँ।
जन अदालत,
जी बिल्कुल। ये पत्र हमें लिखा है उपेंद्र ठाकुर ने, चंपारण बिहार से, पूरी चंपारण बिहार से, जो कहते हैं राजेश जोशी भाई, आपके लिए एक अनुरोध करता हूं कि अगर विवेचना एक राम मनोहर लोहिया जी पर हो जाए, VP सिंह पर हो जाए एक विवेचना, वो सुनना चाहते हैं।
बिल्कुल, आपने जो बात कही मेरे मुंह की बात छीन ली। रेहान फजल से इस बारे में बात भी हुई है, और बहुत सारे हमारे श्रोता ये गुजारिश करते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन सब पर भी विवेचना होनी चाहिए। तो ये ऐसी भारतीय राजनीति की विभूतियां हैं जिनके बारे में हम सुनना, समझना, सोचना पसंद ही करते हैं। तो रेहान साहब की लिस्ट में ज़रूर मुझे उम्मीद है कि ये नाम होंगे।
जी, और अगला पत्र भेजा है महेंद्र सहारण ने, जो कहते हैं कि यरूशलम पर इसराइल फलस्तीन संघर्ष पर प्रकाश डाला मोहनलाल ने, कार्यक्रम था दुनिया जहां।
ये ईमेल है इनका।
जी, ईमेल है ये।
बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया है।
राजेश जी, अगला जो ईमेल आया है वो अर्जुन दान चारण का, कर्मावास बाड़मेर से, जो लिखते हैं वही कि मोहनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहां जो यरूशलम पे था,
इनको भी पसंद आया। बिल्कुल।
और बल्कि गौतम दत्ता जी को भी पसंद आया है, जो है किशनगंज से, और उन्होंने कहा है कि मोहनलाल ने प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। और फिर वात्सल्य राय जी की भी तारीफ की है और कहा है कि गुरुवार 14 दिसंबर का नमस्कार भारत जो प्रस्तुत किया वात्सल्य राय ने, वो बहुत दमदार तरीके का था, मतलब दमदार।
यानी आज सुबह के कार्यक्रम की ही ये बात कर रहे हैं। आज सुबह गुजरात में जो चुनाव मतदान होना था, बल्कि अब तो हो चुका है, उसके बारे में वात्सल्य के कार्यक्रम की तारीफ की जा रही है। वात्सल्य जरूर सुन रहे होंगे इसको।
इलाहाबाद से अनिल शुक्ला ने लिखा है कि गुजरात चुनाव पर अर्चना पुष्पेंद्र की जो रिपोर्ट थी वो उन्हें एक तरफा लगी, और कहा कि जो टिप्पणी दी गई है, जो विश्लेषण हुआ है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी विरोधी और कांग्रेस के समर्थन में होने लगा।
ये अनिल भाई, अनिल शुक्ल जी, आपकी ये लगातार शिकायत रही है और लगातार हम आपके शिकायतों को आपकी राय में जगह देते रहे हैं। आपको ये क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीबीसी एक खास पक्ष लेकर के रिपोर्टें प्रस्तुत करती है? जो विश्लेषक की राय होती है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। अगर आप ध्यान दें, गौर से सुने, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचारक हैं राकेश सिन्हा, वो bbchindi.com के लिए लिखते हैं, बीबीसी में रेडियो में हम उनको आमंत्रित करते हैं, हमारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं वो। आप थोड़ा सा उनको भी ध्यान दिया कीजिए और अपनी आलोचना तो ज़रूर जारी रखिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम तो ये मानते हैं निंदक निये रे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अनिल शुक्ला साहब की चिट्ठियों का हमें इंतजार रहेगा। चलते चलते पता बता देते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब कार्यक्रम में सुनिए खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको क्रिकेट की खबरों से रूबरू कराते हैं और लेकर चलते हैं आपको पर्थ के मैदान पर, जहां एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच का आज पहला दिन रहा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हो रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 305 रन बनाए। शुरुआती झटकों के बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज डेविड मैलन ने अपने करियर का पहला शतक जड़ा और जॉनी बेस्टो के साथ 174 रन की पार्टनरशिप के साथ इंग्लैंड को 205 रन का स्कोर दिया। डेविड मैलन ने 174 गेंदों में 110 रन बनाए। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए और जॉस हेजलवुड और पैट कमिंग्स ने 1-1 विकेट चटकाए। और अब खबर फुटबॉल की दुनिया से। रियाल मैड्रिड के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। रियाल मैड्रिड ने क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना ली है और इसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है रियाल मैड्रिड के खिलाड़ी गेरेथ बेले को। 13 दिसंबर को रियाल मैड्रिड और अलजजीरा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें रियाल मैड्रिड ने अलजजीरा को 2-1 से हरा दिया। बेले 81वें मिनट में विकल्प खिलाड़ी के रूप में आए और उन्होंने आते ही गोल दाग दिया, जिससे रियाल मैड्रिड का कुल स्कोर 2 हो गया। रियाल मैड्रिड शनिवार को होने वाले फाइनल में दक्षिणी अमेरिका के चैंपियन ब्राजीली क्लब ग्रेमियो से भिड़ेगा।
और खेल से ही एक जानकारी आपको दे दें कि दुबई सुपर सीरीज के ग्रुप बी के दूसरे मुकाबले में भी के श्रीकांत हार गए हैं। कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त एक बार फिर से आ गया है।
बीबीसी समाचार। गुजरात विधानसभा में दूसरे और आखिरी चरण की 93 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान पूरा हुआ। उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के मुताबिक दूसरे चरण में शाम 4 बजे तक लगभग 69% वोटिंग हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान के दौरान रूसी अधिकारियों से उनके संबंधों की बात केवल इसलिए उछाली गई ताकि ट्रंप अपने समर्थकों की मांग पूरी न कर सकें। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की चीन यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के पत्रकारों और चीनी सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट की खबरें आ रही हैं। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि देश के दक्षिणी हेलमंड प्रांत में तालिबान लड़ाकों के एक हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। इराक में चरमपंथ से जुड़े अपराधों के लिए सजा प्राप्त 38 लोगों को फांसी दे दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये सभी कथित इस्लामी चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के सदस्य हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। नमस्कार।